शांति। सबसे पहले हम सभी के ध्यान में ये बात आती है कि किस आधार पर हमें मुरली याद रहे। मुरली सुनते तो हैं लेकिन मुरली कई बार भूल जाती है मुरली के पॉइंट्स, तो क्या करें या कैसे मुरली सुने जो मुरली हमें भूले नहीं, याद रहे। तो ये बाबा ने ही एक बार विधि बताया था मुरली सुनने का, कैसे मुरली सुने। तो क्या होता है इसमें कि आप जब सुनते हैं कोई भी बात, कहीं भी जब सुनते हैं तो केवल शब्द नहीं लेकिन जो सुन रहे हैं ना उसको देखने लग, जब देखेंगे उसको फिर वो हमें याद रहेगी, भूलेगी नहीं। जैसे जनरली आजकल कार्य व्यवहार में भी देखेंगे या कारोबार में या घर परिवार में कहीं भी, तो आजकल जनरली क्या होता है, मोबाइल रखेंगे कहीं और ढूंढेंगे कहीं और, चश्मा भी कहीं और रख देंगे ढूंढते रहेंगे, पेन कहीं और रख देंगे ढूंढते रहेंगे। ये छोटी छोटी बातें क्यों भूल जा रही सभी। तो इसीलिए कहते हैं कि जब कोई भी चीज रखते हैं, जैसे मान लो आप घड़ी भी रख रहे हैं या मोबाइल भी रख रहे हैं, तो ऐसा नहीं कि मुझे तो पता है ऐसे रख दो यहाँ तक, नहीं, जब आप मोबाइल रख भी रहे ना तो ऐसे देखते हुए रखिए, चश्मा भी निकाल के रख रहे हैं तो चश्मा देखते हुए रखिए, पेन भी जहाँ रख रहे हैं ना देखते हुए रखिए, अगर रख रहे हैं तो देखते हुए। तो इससे क्या होगा, अगर बाई दबे आप भूल भी जाते हैं ना कि मैंने कहाँ रखा था, तो ये जो आपने देखते हुए किया है ना वो याद आ जाएगा। तो कभी भी कोई भी बात अगर करते हैं ना इसे देखते हुए करो, आदत डाले। इसीलिए आप देखेंगे कोई मान लो ग्लास की चीज है, ग्लास है और आपने बच्चे को दिया और कहा कि लेके जाना वहां रख देना, तो क्या कहेंगे, ध्यान से ले जाना। ध्यान से ले जाना अर्थात ऐसा नहीं ले जा रहे इधर देख रहे हैं इधर, है ना, देखते हुए चलना। तो जब कोई भी चीज हम देखते हुए, है ना, देख कर करते हैं या देखते हुए, तो वो भूलने के चांसेस बहुत कम होती है। तो इसीलिए बाबा ने एक बार मुरली में विधि बताई थी कि जब आप मुरली सुनते हैं तो क्या करो, रियलाइज करो उसे, उसे अनुभव करने लगा। इसीलिए बाबा कई बार मुरलियों में कहते हैं कि आप जितना भी आप ज्ञान जितना भी सुन लो, जितना भी योग लगा लो, जितना भी धारणा करो, जितनी भी सेवाएं करो, सबका मूल उद्देश्य या लक्ष्य कहें क्या होगा, कि जो अपना स्वरूप है वो चेंज हो जाए। हमारा सारा पुरुषार्थ इसी के लिए है कि हमारा स्वरूप चेंज हो। और स्वरूप कब चेंज होगा, तो बाबा ने कहा है कि अगर स्मृति स्वरूप बनना है तो दो बातें चाहिए, एक तो उसे रिवाइज करो, जो आपने पॉइंट सुना है भले दो ही पॉइंट्स हो उसको दिन में कई बार रिवाइज करो मुरली को, और दूसरा रियलाइज करो। तो जैसे कि बाबा ने कहा ना, तो ऐसे जब मुरली सुन रहे हैं उसी समय उसको आप अनुभव करो। कैसे अनुभव करो, तो ऐसा तो नहीं है कि आपने मुरली सुन लिया पॉइंट्स याद है, आपने छोटे बच्चों जैसा रट लिया या सुना दिया, हाँ मुझे मुरली याद है मैंने सुना दिया, है ना। तो मुरली अब हमने सुना तो ये हमारे स्वरूप में चेंज लाना चाहिए, तब कहेंगे कि हमने मुरली सुना। तो जैसे कि आज की मुरली है, आज की मुरली बहुत इजी है, क्यों, क्योंकि इसका स्वरूप स्वतः बन जाता है, सामने दिख रहा है। तो जैसे कहा ना कि कोई भी कार्य जब आप कर रहे हैं ना तो आंखों के सामने देखें, कोई चीज रख भी रहे ना देखें। इसी प्रकार बाबा ने क्या कहा, अपने को चेक करो, क्या चेक करो कि मैं फूल बनाऊं, तो मैं फूल बना हूं या मेरे में कांटा है ना, उसके संस्कार है, चेक करना। तो कैसे देखेंगे, तो जब इसको देखें फूल दिखाई दे सामने, एक तरफ कांटा भी दिखाई दे, ये कांटा है ये फूल है, तो अगर ये स्मृति में है तो भूलेगी मुरली, फूल दिखाई दे। अब क्यों फूल है आत्मा और क्यों कांटा है, वो भी बाबा ने एक्सप्लेन किया। क्यों फूल है, जब दैवी स्वभाव है ना, दैवी गुण है तो कहेंगे फूल है, और कांटे अर्थात जहां जहां क्या है, जहां इंप्योरिटी है, यहां जहां पांचों विकार हैं, उसे कहेंगे कांटा। और बाबा ने क्या कहा कि जब हम देह अभिमान में होते हैं है ना, तो देह अभिमान में जब होते हैं तो क्या हो जाते हैं, इससे हम कांटे जैसे बन जाते हैं है ना। दूसरी बात बाबा ने कहा कि बाबा में प्यार कैसे हमारा जो है निश्चय चाहे प्यार अटूट रहे, कम ना हो, तो पहला आधार क्या बाबा ने बताया कि जब हम अपने को आत्मा समझते हैं, जब अपने को आत्मा समझते हैं, जितना जितना आत्मा समझेंगे ना तो क्या होगा, जितना हम आत्मा समझेंगे अपने को तो बाबा की याद स्वतः आएगी, क्योंकि बाबा पुल कर लेता है, खींच लेता है बाबा। तो पहली शर्त यह है कि हम अपने को आत्मा समझें, और इसके साथ दूसरी बात बाबा ने यह भी कहा कि यह भी निश्चय हो कि जैसे ब्रह्मा बाबा का जो रथ है ना, इसके अंदर परमात्मा आकर के इनके द्वारा हमें पढ़ा रहे हैं। तो बाबा ने कहा अगर ये दोनों निश्चय है, एक तो हम आत्मा समझते हैं और फिर हम बाबा को देखते हैं साकार बाबा के तन में, तो बाबा ने कहा हमारा निश्चय हमारा प्यार अटूट रहेगा। तो बार बार ये हमें स्मृति में लाना होगा, देखना होगा। देखो दुनिया में भी आप किसी को कहो ना कि भगवान है, वो परम धाम में है, वो ब्रह्मांड में है, तो किसी को कोई ऑब्जेक्शन नहीं है, लोग कहेंगे हाँ वो भगवान तो है परम धाम या ब्रह्मांड जहां भी कहो। लेकिन जब कहेंगे ना कि ब्रह्मा बाबा के तन में आते हैं, इनके तन के अंदर ही आते हैं, चाहे गुलजार दादी के तन रथ है तो उसमें कहेंगे इसमें बाबा आते हैं साकार बाबा के साथ, जब ये बात आती है ना तो लोगों को ऑब्जेक्शन शुरू हो जाता है। तो सोचिए कि जब स्वयं भगवान इस तन में आते हैं, ब्रह्मा बाबा के तन में आते हैं, तो लोगों को डाउट्स होता है, बिलीव नहीं करते हैं, डाउट्स हो जाता पता नहीं। तो जब भगवान आते हैं इस तन के अंदर तो उनके ऊपर भी डाउट कर रहे हैं, क्यों, क्या भगवान से ये हो गई बात, क्योंकि तन के अंदर आ गए, जिसको बाबा ने कहा ना देह अभिमान, जो ही तन में आए ना तो लोगों के डाउट शुरू। तो इससे हमें यह समझना है कि जब स्वयं भगवान बाबा के तन में आते हैं तो लोग डाउट करते हैं, तो हम तो हमेशा कहां रहते हैं, हम तो देह में ही रहते हैं ना, तो हमारी क्या हालत होगी, तो इससे हमें समझना है कि जब भगवान में भी डाउट्स कर देते हैं तो हमारे में नहीं करेंगे। तो इसीलिए बाबा ने कहा कि आप इसका प्रैक्टिस करो, निश्चय करो कि मैं आत्मा हूं। और इसीलिए बाबा ने कहा कि बाबा आए ही हैं क्या करने, पवित्र बनाने, प्योर बनाने। और इसका आधार ही है हम जितना अपने को आत्मा समझते हैं, जितना हम आत्मा समझते हैं तो ऑटोमेटिक दैवी गुण आने लगते हैं हमारे अंदर। और जब हम आत्मा समझते हैं, आत्मा का अभ्यास पक्का होता है, तभी हम बाबा को भी याद कर सकते हैं। इसीलिए कई बार लोग कहते हैं हमारी याद टूट जाती है, हमारा योग टूट जाता है। क्यों टूट जाता है? क्योंकि जब एक बिंदु देखेंगे ना, कभी भी केवल एक पॉइंट देखेंगे तो योग टूटेगा। इसीलिए बाबा ने कहा है हमेशा क्या करो, हमेशा क्या करो, वो दो बिंदु देखो। जैसे आप बैठे हैं परमधाम में, आप दो बिंदु देख रहे हैं। दो बिंदु कौन? एक बाबा और मैं। तो कई बार बाबा साकार मुरली में कहते हैं कि आप चिपक जाओ दोनों एक दूसरे से, दोनों बिंदु चिपक गए, एक बाबा और एक मैं। ऐसे परमधाम में देखो दोनों जुड़े हुए। तो ऐसे जब ऐसी स्थिति में होंगे तो आप लंबे समय तक योग में रह सकते हैं। तो इसीलिए बाबा ने कहा कि बाबा आए ही क्यों हैं? हमें पावन बनाने, पवित्र बनाने। तो हमारी कॉन्शियस में हो कि भगवान आए हमें पावन बनाने। तो बाबा ने कहा इसका कितना महत्व है। क्या महत्व है? एग्जाम्पल भी बाबा ने दिखाया, सुनाया आज मुरली में, कि जैसे मान लो बाबा ने कहा कुमारी है, कुमारी जब पवित्र है, कुमारी है तो उसकी पूजा होती है, है ना? लेकिन जब वाम मार्ग में आ जाती है तो फिर क्या होती है? कहां वो उसके आगे सभी झुकते थे, अभी उल्टा हो जाता, अभी इसको सबके आगे झुकना होता है। तो ये सबका आधार क्या है? पवित्रता। तो बाबा आए हैं क्या करने? हमें पवित्र बनाने। तो हमारा जो भी कर्म है, हमारे जो भी एक्शन है, हमेशा ध्यान रहे कि इससे हमारी प्योरिटी बढ़ रही है, हमारी प्योरिटी का लेवल बढ़ रहा है। क्योंकि जितना जितना हम प्योर बन रहे हैं, अर्थात हम फूल बन रहे हैं। और अगर हमारे अंदर देह अभिमान के लक्षण आ रहे हैं, हम देह में रहते हैं, देह को देखते हैं, जिससे हम कांटा बन रहे हैं। तो हमेशा ये स्मृति रहे। जैसे बाबा ने आज मुरली में कहा कि बाबा कहां लेके जाते हैं आपको? शिवालय। शिवालय अर्थात स्वर्ग। तो मुरली जैसे आपने सुना केवल, तो स्वर्ग मीन्स स्वर्ग बोले चल दिए? नहीं, ये मुरली बैठ करके ना, अगर एक मुरली में आप चाहो तो 7-8 घंटे भी एंजॉय कर सकते हो। जैसे आप मुरली रख लो सामने, और जैसे आप पढ़ रहे हैं, जैसे आपने कहा बाबा, जो ही बाबा आपने कहा या परमात्मा कहा, तो क्या करें? उस बिंदु रूप में दिखाई दे परमधाम में बाबा, एक मिनट देखो उस बाबा को। जब भागीरथी बोलते हैं, ब्रह्मा बाबा भी कहते हैं, तो उसमें भी देखें दो बिंदु, दोनों बाबा को। इसी प्रकार जैसे आज बाबा ने कहा शिवालय, शिवालय किसको कहते हैं? स्वर्ग को भी कहते हैं ना शिवालय। तो जो स्वर्ग है उस स्वर्ग को भी अनुभव करना, जैसे बाबा ने कहा ना वो स्वर्ग, ऐसे नशा नहीं चढ़ेगा। आप स्वर्ग, बाबा हमें स्वर्ग में ले जा रहे हैं, हमें शिवालय में ले जाते हैं। तो जो स्वर्ग कैसा है, इसीलिए बाबा कहते हैं उसका अभी नशा होना चाहिए, हम स्वर्ग में जा रहे हैं, छोटी सी बात नहीं। कई बार लोग क्या कहते हैं हमको तो इसका कुछ ये नहीं, कोई देखो एक छोटी सी भी सौगात देता है, गिफ्ट देता है तो कहते हैं इसकी कोई उसका कोई मूल्य नहीं होता है। ये नहीं कहेंगे तो बहुत छोटी सी सौगात दिया है, छोटी सी भी सौगात होगी क्या कहेंगे, थैंक्स कहेंगे ना, एक छोटी सी भी होती। लेकिन सतयुग 21 जन्म तक होगा, तो कैसा है वो, उसे कैसे अनुभव करें। तो देखो जब बाबा ने कहा स्वर्ग, तो स्वर्ग में क्या देखें, महल देखें सामने, वहां नदी भी देखें आप, नदी। अब नदी बह रही है तो केवल नदी ऐसे नहीं देखें, उसमें पानी बहता हुआ फील करें, हमारे बगल से ही बहता हुआ जा रहा पानी। वहां सतयुग में नदी में पानी भी कितना होता है, गहराई कितनी होती है मालूम है, बाबा ने एक बार साकार मुरली में बताया था कितना होता है पानी नदी में सतयुग में, कहते हैं कमर जितना, इतनी गहरी नदी होती, इससे ज्यादा गहरी नहीं होती। तो इसको फील करना, इसको महसूस करना, महल देख रहे हैं, बहता हुआ पानी देख रहे हैं, देवी देवताओं को वहां देख रहे हैं। तो ये फील करना, ये महसूस करना स्वर्ग। तो ये जब इस प्रकार से आप देखेंगे आपको मुरली भूलेगी नहीं, है ये फील करने के लिए, ये स्वरूप में लाने के लिए। तो जितना हो सके हम इसका प्रैक्टिस, इसको बैठ करके स्वरूप में लाएं, एक तो रिवाइज करें और फिर उसको देखें। तो इसी को बाबा ने इस विधि बताई इसकी, कि आप रियलाइज करते जाओ, उसको अनुभव करते जाओ, रिवाइज करो, जो मुरली सुना एक बार रिवाइज करो और फिर रियलाइज। ये तो हम मुरली सुन लेते हैं लेकिन रियलाइज करने के लिए हमको फिर से टाइम चाहिए, समय चाहिए। तो इसलिए हम जो भी सुन रहे हैं उसे देखें, स्वर्ग को भी देखें, बाबा को भी देखें, जो भी सुन रहे हैं, है ना। इसी प्रकार बाबा ने क्या कहा कि अमृत वेले भी क्या करें, अमृत वेले ये जो हमारा स्व का अभ्यास है ना, तो स्व के अभ्यास के द्वारा क्या करना, हमें वायुमंडल बनाना, वाइब्रेशंस बनाना चारों ओर। जैसे हम अमृत वेले बैठ गए और हम जब वाइब्रेशंस फैलाते हैं, जब कार फैलता है, तो बाबा ने कहा इसी के आधार पर हमें मनसा सेवा का सर्टिफिकेट मिलेगा, है ना। मनसा सेवा का सर्टिफिकेट, ये जो हम वाइब्रेशंस देते हैं ना, अमृत वेले उठ गए बैठे और बाबा से हम वाइब्रेशंस ले रहे हैं और फैला रहे हैं, तो ये जो वाइब्रेशंस फैलाते हैं, जितना आप वाइब्रेशंस फैलाते हैं, इसी के आधार पर मनसा सेवा का सर्टिफिकेट मिलेगा। क्योंकि इसी के आधार पर बाबा ने कहा ना, जैसे अभी तो हमारे पास कुछ समय है जो हम ज्ञान सुना भी देते हैं किसी को, लेकिन बाबा ने कहा है आने वाले समय में समय नहीं होगा, हम ज्ञान नहीं सुना सकते किसी को, तो हमें वाइब्रेशंस से ही हर एक को चेंज करना होगा। इसलिए बाबा ने कहा आत्माओं को तो आप ज्ञान के आधार पर चेंज कर सकते हैं, प्रकृति को कैसे चेंज करेंगे, ये वाइब्रेशंस। तो अमृत वेले हम जितना ये स्व का अभ्यास पक्का रखेंगे, जितना ये वाइब्रेशंस फैलाएंगे, तो इसके आधार पर ही हमारा हम सर्टिफिकेट हमको मिलेगा। तो ये स्वस्थिति के आधार पर ये जो वाइब्रेशंस फैलाते हैं। और दूसरी बात है कि जैसे कहते हैं ना वृत्ति दृष्टि है ना, वृत्ति दृष्टि है, ये भी हमारी कैसी हो। जैसे अभी दुनिया वाले को हमको ज्ञान सुनाना पड़ता है, समझाना पड़ता है, लेकिन हमारी स्थिति ऐसी हो बाबा ने कहा कि वो देख के हमें सुनाना ना पड़े, वो खुद अट्रैक्ट हो, खुद आकर्षित हो। और ये कब होगा बाबा ने क्या कहा, जब हमारी दृष्टि वृत्ति कहीं किसी पर जाकर ठहरती नहीं है, हमको दुनिया में कोई प्रिय ना लगे, कोई बहुत अच्छा ना लगे, कहीं हमारी दृष्टि ठहर ना जाए। तो अगर हमारी दृष्टि वृत्ति ठहरती नहीं है तो ऐसी सिचुएशन में ही हम ये सेवा कर सकते हैं। जैसे बाबा ने एग्जाम्पल और भी बताया, जैसे मान लो आजकल आत्माएं बहुत हलचल में हैं, आते हैं उनको बहुत क्वेश्चन है, बहुत प्रश्न है, वो आएंगे आपसे पूछेंगे ये प्रश्न, ये समस्या है ये। तो जैसे जानकी दादी बताती एक बार कि जानकी दादी बाबा से मिलने आई झोपड़ी में और बहुत प्रश्न लेके आई, कई क्वेश्चन थे। जब बाबा के पास आई दादी ने देखा बाबा इतना पीसफुल, इतना शांत। दादी की हिम्मत नहीं हुई कि पूछें बाबा से। फिर बाबा ने थोड़ी देर बाद पूछा, बच्ची क्या बात है, कुछ पूछना है? तो दादी ने कहा, हाँ बाबा पूछना तो था, लेकिन आपके पास मैं जब आई तो प्रश्न ही भूल गया सब कि क्या पूछना है। तो बाबा ने वरदान दिया कि बच्ची आपके पास भी कोई आएगा तो वो भूल जाएगा अपना प्रश्न। तो इसीलिए बाबा ने कहा कि अगर हमारी दृष्टि वृत्ति अगर ऐसी है, कहीं अटकती नहीं है, तो हम किसी की भी, दूसरे की भी दृष्टि वृत्ति को हम चेंज कर सकते हैं। आज ने कहा ना बाबा ने, इसीलिए कहा। लोगों की इच्छाएं भी बहुत है आजकल, ये करें ये करें वो करें, इसके लिए भी बाबा ने कहा है कि जब हम इच्छा मात्रम अविद्या बनेंगे, हमको जब कोई इच्छा नहीं होगी ना, इच्छाओं से परे हो गए, हमको कोई इच्छा है ही नहीं, तो जब हम ऐसी स्थिति में लंबे समय तक रहेंगे तो हमारे पास कोई आएगा ना, उसको भी ऑटोमेटिक खत्म हो जाएगी इच्छा। नहीं तो हम हलचल में हैं कि अभी ये गाड़ी लिया है, अभी ये गाड़ी लेंगे, तो दूसरा भी आपके पास आएगा ना, तो वो भी कहेगा कि अच्छा अच्छा तो हम भी ये वाली लेंगे। अभी आपने क्या किया, कौन से संकल्प उत्पन्न कर दिए? और आपके संकल्प, अगर कोई संकल्प नहीं, कोई इच्छा नहीं है, ऑटोमेटिक आपके पास जो आएगा उसकी इच्छाएं खत्म हो जाएंगी। तो इसीलिए आज बाबा ने कहा कि अंत समय में क्या करना है, अंतिम समय में हमको सबकी वृत्तियों को, दृष्टि को, कृति को, यहां तक उनकी स्मृति को भी हमें चेंज करना होगा। और बाबा ने कहा ये तभी होगा जब हम इतनी प्योर होंगे, हमारी दृष्टि वृत्ति इतनी प्योर होगी कि कहीं किसी पर अटके नहीं। ये नहीं कि यहां ठहर जाए, इसको अच्छा देखा, इनको अच्छा देखा तो बार बार वहीं जाए, नहीं, बिल्कुल न्यूट्रल, सबके लिए हमारी दृष्टि एक जैसी है, तब इसके द्वारा हम सेवा कर सकेंगे। इसीलिए बाबा ने कहा मनसा, मनसा द्वारा ही हम किसी के मन को भी बदल पाएंगे, मनसा द्वारा ही शक्तियों का दान है ना। जैसे कहते हैं कर्म द्वारा गुणों का दान देते हैं, जैसे कहते हैं कोई बहुत शांत है, बहुत खुश मिजाज है, तो देख के कैसा लगता है, हाँ ऐसी नेचर होनी चाहिए, हमें ऐसा नेचर बनाना है। तो ये कर्म को, एक्शन को देख के हम सीखते हैं, लेकिन यदि किसी को बदलना है कोई कमजोर आत्मा है तो हमें अंदर से जो वाइब्रेशंस हैं, गुड विशेज हैं, उस आत्मा को देना होगा। तो अंदर से हम अपनी वृत्ति से दूसरे की वृत्ति को चेंज कर सकते हैं। तो इसीलिए बाबा ने कहा कि जो एक सेकंड में आप कहते हैं कि मुक्ति, जीवन मुक्ति, तो बाबा ने कहा यह तो चैलेंज है, आप करके दिखा सकते हो, कहा ना आज बाबा ने। तो ऐसा भी हम कब कर सकते हैं, जब हमारी ये दृष्टि वृत्ति ऐसी होगी, इसमें खो जाएंगे। तो हमारा हमेशा अभी यही ध्यान होना चाहिए, यही प्रैक्टिस होनी चाहिए। एक तो हम उसको जो भी हम मुरली सुनते हैं उसको देखते जाएं, मुरली सुना हमने, सामने दिखाई दे, अनुभव करें। और जो बाबा ने टास्क दिया है, जैसे बाबा ने टास्क दिया कि हमारी दृष्टि वृत्ति स्मृति कैसी हो, है ना, तो कोई छोटी सी ऐसी बात नहीं है कि ये जो स्मृति बाबा ने कहा स्मृति स्वरूप। तो एक जगह एग्जांपल दिया है बाबा ने, जैसे मान लो कोई माँ है तो माँ को कोई ट्रेनिंग देते हैं क्या, नहीं, ऑटोमेटिक माँ को ऐसा हो जाता है मैं माँ हूँ, 24 घंटे कॉन्शियस है। वो सोते समय भी क्या सोचेगी, छोटा बच्चा है तो कोई इसका हाथ न दब जाएगा, पाँव न, सोते जागते भी हमेशा ध्यान में है कि मैं माँ हूँ। क्यों, माँ का उसका स्वरूप हो गया, स्मृति स्वरूप। अगर ऐसे ही हम भी ऐसा समझते हैं कि हम देवी देवता हैं, इस स्वरूप में हो गए, आप देवी के स्वरूप में चल रहे हैं, देवता के स्वरूप में चल रहे हैं, फील कर रहे हैं बैठ के, तो ऑटोमेटिक ये हमारे अंदर ये स्वभाव ये गुण आते जाएंगे। और बाबा ने क्या कहा कि समझदार कौन है, जो मनसा वाचा और कर्म तीनों साथ साथ करते हैं, तीनों साथ साथ करते हैं अर्थात तीनों साथ साथ करते हैं अर्थात देखो इसमें कोई न कोई अभ्यास चालू रखो, हमेशा हर एक अभ्यास नहीं कर सकते, कई बार आप बाबा की याद में रहते हैं, कम से कम कुछ नहीं तो सामने वाले को आत्मा देख सकते हैं या स्वयं को आत्मा फील कर रहे हैं, किसी न किसी को एक भी अगर इमेज रखते हैं ना तो चेंज होता है। इसीलिए बाबा ने कहा जैसे कर्म और योग, तो कर्म और योग के लिए भी बाबा इसीलिए कहते हैं कि ऐसा नहीं कि केवल 4 घंटे कर्म 4 घंटे योग, नहीं, जब आप बाबा की याद में रख के करते हैं कर्म तो इसी को बाबा कहते हैं बैलेंस। कर्म और योग का बैलेंस अर्थात बाबा की याद में रह करके जब कोई भी काम करते हैं, कोई भी सेवा करते हैं, कोई भी कर्म करते हैं, तो यह बैलेंस। तो इसीलिए जब हम वाचा सेवा भी कर रहे हैं तो बाबा की याद में, ये ना कॉन्शियस में हो कि मुझे ये बोलना है, मैं ये पॉइंट नहीं, मुझे नहीं, बाबा ने जो कहा वो बाबा के पॉइंट्स, बाबा की मुरली के पॉइंट्स। तो ये है कि तीनों सेवा, आप कोई कर्म मान लो सफाई भी कर रहे हैं, स्थूल सेवा भी कर रहे हैं, उसमें भी क्या करें, बाबा की याद में रहकर करते हैं। तो इस प्रकार से मनसा वाचा कर्मणा से। तो इसीलिए याद रखें कि केवल मुरली नहीं सुने, कोई भी पॉइंट सुनते हैं तो थोड़ा टाइम ले, बैठ के 5 मिनट 10 मिनट आप कुछ नहीं तो सतयुग में चले जाओ, कहीं अकेले बैठे हैं, फील करो सतयुग को, परम धाम को भी, कभी बाबा को, तो फिर आपकी स्मृति आपकी याद बढ़ती जाएगी। ठीक है, ओम शांति है।